narayana 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 आनंदोय 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 भाव के विषय में कहा जाता है संसार के में जो भाव है वही प्रधान बात है। यदि कहो कि भाव कैसे बढ़े तो श्रद्धा होने से भाव बढ़ता है और श्रद्धा भी खुद भाव है। भाव जो है वो व्यापक चीज है। भाव अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। भाव का ही दूसरा नाम भावना है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। अयोध्या कांड का विषय है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर के वहां जब पहुंचे धनुष यज्ञ में तो लोगों ने भगवान का दर्शन किया। उस समय में जिस उसकी जैसी भावना थी भगवान उनको वैसे ही दिखने लगी। और यही बात भागवत में आती है दसम स्कंद के पूर्वार्ध में। वहां भी भगवान श्री कृष्ण जी धनुष यज्ञ में गए हैं कंस के यहाँ। तो वहां भी स्त्रियों ने पुरुषों ने भगवान के दर्शन किए। तो ठीक यही भाव है जिनका जैसा भाव था वैसे रूप में भगवान दिखने लगे। तो भाव ही प्रधान है उसी के अनुसार उनको लाभ होता है। यही भाव गीता में बतला है नास्ति बुद्धि युक्तश्च वह उसको तो युक्त कहते अरे योग युक्त न हो उसको अयुक्त कहते माने योग के साधन से रहित उसमें आस्तिक बुद्धि नहीं होती अध्यात्म विषय की बुद्धि नहीं होती और न उसमें उत्तम भावना ही होती है यानी परमात्मा के विषय की श्रद्धा भी नहीं होती। परमात्मा में अस्तित्व का जो भाव है वो उसमें नहीं रहता। इस कारण से भगवान की जो स्मृति है भगवान के स्वरूप की जो स्मृति है वो भी सुनी होती। इसलिए भावना का अर्थ टीकाकारों ने दोनों रकम से किया है। भावना माने श्रद्धा और भावना माने ईश्वर का चिंतन। और बिना भावना के शांति नहीं मिलती और बिना शांति के सुख कहाँ। और साधन से अंतःकरण शुद्ध होता है और अंतःकरण शुद्ध होने से अंतःकरण का उत्तम भाव होता है। उत्तम भाव को हम श्रद्धा कह सकते सत्वानुरूपा सर्वश्च श्रद्धा भवति भारत है श्रद्धा मयोयं पुरुषो योयस् श्रद्धा से एव सः। सब की श्रद्धा अंतःकरण के अनुसार होती है। जिसका जैसा अंतःकरण होता है उसकी वैसी श्रद्धा होती है। ये पुरुष श्रद्धामय है यानी श्रद्धा इसका स्वरूप है। जिसकी जैसी श्रद्धा है वह पुरुष वैसा ही है। तो उच्च कोटि का जो भाव है वो कैसे हो तो बतलाया जाता है कि श्रद्धा से। क्योंकि भाव जो है वो श्रद्धा स्वरूप ही है। निष्ठा जो है वो श्रद्धा के अनुसार ही होती है। पुरुष की जो इज्जत है वो श्रद्धा पर ही निर्भर करती है। जिसको हम लोग अच्छी नीयत कहते हैं कि इस मनुष्य की नीयत बहुत ही बढ़िया है माने इसका बहुत बढ़िया भाव है। तो भावना के ये सब भेद हैं। अच्छी भावना और बुरी भावना और अच्छी भावना का भेद है कि नीयत जो है सो भावना के अंतर्गत है श्रद्धा जो है सो भावना के अंतर्गत है। और भाव और भावना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ही भेद है। वस्तु जो पदार्थ एक ही है जिससे निष्काम भाव है तो उच्च कोटि का जो भाव है उससे परमात्मा की प्राप्ति बहुत शीघ्र हो सकती है। चाहे श्रद्धा ईश्वर में हो, चाहे महात्मा में हो, चाहे शास्त्र में हो, चाहे अपने बुद्धि का जो सद्भाव है उसमें भी जब श्रद्धा हो जाती है तो वो भाव से बढ़ता है। महात्मा पुरुषों में जब श्रद्धा बढ़ती है तो साथ साथ के बीच के वहां भाव बढ़ता है। प्रेम जो है ये भी एक प्रकार से भाव है, तो श्रद्धा होने से प्रेम भाव बढ़ता है और भाव के बढ़ने से उसका जीवन बदल जाता है, बहुत उत्कोटि का हो जाता है और महात्मा उसको दूसरे रूप में देखने लगते हैं और उनकी क्रिया, महात्मा का जो बर्ताव है, चरित्र है, वह भी दूसरे रूप में देखने लग जाता है। कोई भी एक वक्ता है एक ही समय में एक ही बात सबको कह रहा है, किंतु सुनने वालों का अलग अलग भाव होने से उनको लाभ अलग अलग पहुंचता है। जैसा जिसका भाव होता है उसके अनुसार ही उनको लाभ होता है। सुनने वाले व्यक्ति सब वक्ता में एक भाव नहीं रखते। जितने मनुष्य होते हैं सबका भाव अलग अलग होता है, कुछ न कुछ फर्क है, एक के साथ में एक का रहता ही है, तारतम्यता रहती है, एक से एक का मिलना संभव नहीं है, क्योंकि बुद्धि भिन्न भिन्न है, समझ भिन्न भिन्न है, भाव भिन्न भिन्न है। कोई एक कुछ कोटि का विद्वान या यूं कहिए कोई एक महापुरुष व्याख्यान दे रहा है, सुनने वाले सभी श्रेणी के हैं। सुनने वालों में जो नास्तिक होता है वो कहता है कि ये व्याख्यान दाता दम्भी है, दम्भी, क्योंकि जैसे कहता वैसे खुद करता नहीं, ये एक पाखंड रच रखा है। दूसरा कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये अच्छे विद्वान है, ब्राह्मण है, इनकी तो ये जीविका है। तीसरा कहता है इनके ये पैसा नहीं है, ये रोजगार नहीं है, ये तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए इस प्रकार से सत्संग लोगों को कराया करते। चौथे ने कहा तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, तुम भी एक प्रकार से बेसमझ हो, ये तो मुक्त पुरुष है, दूसरों के कल्याण के लिए कहा करते। पांचवें ने कहा कि नहीं, तुम्हारी भी श्रद्धा इनमें नहीं है, तुम इनको पहचाना नहीं, ये तो अधिकारी पुरुष है, भगवान के भेजे हुए अधिकारी पुरुष है, संसार के कल्याण के लिए आए। छठे ने कहा कि तुम भी इसको अभी नहीं पहचानते, ये तो साक्षात भगवान ही है, आप ख्याल करके देखिए कितना डिफरेंस हो गया। ये तो एक खास खास बात मैं आपको बतलाई, इसी प्रकार से थी तारतम्यता, इत्र विशेषता, सूक्ष्मता से विचार करने से यही सिद्ध होता है कि जितने मनुष्य हैं उनकी सबकी अलग अलग भावना, भावना ही प्रधान है। पुरुष भी उच्च कोटि का हो, श्रद्धालु भी उच्च कोटि का हो, तो एक क्षण के वहां परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसमें वक्ता में जो कमी होती है तो विलंब होता है, और श्रोता में जो कमी होती है तो विलंब होता है। सतता जहाँ है जहाँ विलंब नहीं, माने दोनों ही एक रकम से उच्च कोटि के पुरुष हैं, दोनों ही वास्तव के मां है, दोनों ही सच्चे हैं, तब विलंब नहीं होता। लोहा पार्श के साथ छूते ही सोना बन जाता है, विलंब नहीं होता। पार्श में कमी हो तो लोहा सोना बन ही नहीं सकता, पास पास नहीं हो, किंतु यहाँ महात्मा न होने पर भी लाभ होता है। ये पास की अपेक्षा महात्मा में विशेषता है। महात्मा नहीं है किंतु महात्मा होने को जा रहा है, वह भी गुणी वृत्ति से एक प्रकार से महात्मा ही है, तो उससे भी लाभ हो सकता है। इसी प्रकार से जो साधक जो जिज्ञासु है श्रोता, उसमें भी कमी रहने से कम लाभ होता है, किंतु लोहे के स्थान में माटी का ढेला हो और पार्स को छुआया जाए तो कुछ भी नहीं होता। पार्स और लोहा दोनों ही जड़ है और ये दोनों ही चेतन है, इसलिए ये बात कही जाती है पार्स और संत में बहुत अंतरा जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समा। इसी प्रकार से थी जो ईश्वर है उसमें जो श्रद्धा है वो और भी विशेष बात है। ईश्वर के तो दर्शन से, स्पर्श से, वार्तालाप से, चिंतन से, नाम स्मरण से भी मुक्ति हो जाती है, किंतु ये बात है श्रद्धा होने से ही। बिना श्रद्धा के तो दुर्योधन आदि को भगवान ने सभा के मां विराट रूप धारण करके दिखलाया, कोई विशेष लाभ नहीं हुआ बल्कि उल्टा परिणाम हुआ। दुर्योधन ने कहा कि ये तो बाजीगरी है, हम भी कर सकते हैं। अश्रद्धा होने के कारण से थी दुर्योधन उस लाभ से वंचित रहा। साक्षात भगवान अवतार लेकर के आवे तो शोभा न हो तो लाभ नहीं। ये ज्ञान होना चाहिए भगवान है, और ज्ञान होने के बाद श्रद्धा होती है, और श्रद्धा होने से प्रेम होता है, और प्रेम होने से पूर्ण लाभ होता है। बिना अवतार के भी जो निर्गुण निराकार भगवान का स्वरूप है या सगुण निराकार भगवान का स्वरूप है, उसमें भी श्रद्धा होने के साथ ही उसका कल्याण हो जाता है, किंतु वो श्रद्धा पूर्ण होनी चाहिए। श्रद्धा की कमी के कारण से ही परमात्मा की प्राप्ति में कमी है। पूर्ण विश्वास हो जाता है कि भगवान है, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है, तो फिर भगवान उसे छिप नहीं सकते, क्योंकि उसको तो सर्वत्र भगवान अनुभव से दिखते हैं। और स्वयं भगवान ने गीता में कहा है कि योमान पश्यति सर्वत्र सर्वं च मई पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि सचमेव न प्रणश्यति। जो मुझ परमात्मा को सब जगह के आकाश की जो व्यापक देखता है, सर्वत्र मुझ परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करता है, और सारे ब्रह्मांड को मुझ परमात्मा के एक अंश के बीच के मां मेरे संकल्प के आधार देखता है, उससे मैं कभी अलग नहीं हो सकता और वह मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता। यानी वो मुझको देखता रहता है अनुभव से, और उसको मैं अपने अनुभव से देखता रहता हूँ। इस पर जोर लगाना चाहिए कि भगवान है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। जितनी भगवान पर अधिक श्रद्धा हो जाती है उतना ही वो भगवान के नजदीक समझा जाता है, और उतना ही जल्दी उसको भगवान मिल जाते। भगवान के ऊपर पूरा विश्वास हो जाता है कि भगवान है, तो भगवान किस प्रकार के हैं वे तो स्वयं भगवान आप ही उसको दर्शन देकर के बतलाएंगे। चाहे निराकार रूप से दर्शन दें, चाहे साकार रूप से। साकार रूप का जो दर्शन है वो तो नेत्रों से होता है, और निराकार भगवान के स्वरूप का जो दर्शन है वो बुद्धि से होता है। जब ये निश्चय हो जाता है कि भगवान है, तो फिर उसे कोई पाप नहीं बनता, भगवान के विपरीत कोई क्रिया नहीं होती। उसको तो ये बात प्रतीत होती है कि निराकार रूप से भगवान सब जगह में आकाश के जो व्यापक हो रहे हैं, तो वह पुरुष भगवान के सम्मुख भगवान के देखते हुए भगवान की आज्ञा के विरुद्ध आचरण कैसे कर सकता है। फिर भगवान के मां जैसे निश्चय बढ़ता जाता है, विश्वास बढ़ता जाता है, ऐसे उसकी श्रद्धा बढ़ती जाती है और श्रद्धा के साथ साथ ही उसका भाव बदल जाता है, आगे जाकर के भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार से शास्त्रों के में विश्वास होने से शास्त्रों का जो भाव है वो अनुभव होने लगता है। जो शास्त्रों में कहीं विपरीत बात दिखती है वो भी उनको अनुकूल दिखने लग जाती है और शास्त्र के अनुकूल ही उनका जीवन बन जाता है। इसी प्रकार से अपना जो अनुभव है, अपनी जो आत्मा है, अपने अंतःकरण का जो शुद्ध भाव है, उसके बीच के वहां जो भगवत विषय का भाव उत्पन्न होता है, वो समझता है कि भगवान की प्रेरणा है, भगवान का आदेश है, उसको भगवान का आदेश मान लेता है तो फिर उसी के अनुसार वो बरसता है, यानी उसकी आचरण हो जाते हैं। तो अपने हृदय के जो सद्भाव हैं, वे ईश्वर की प्रेरणा है ऐसा जब मान लिया जाता है तो उससे भी उसका कल्याण हो जाता है। तो भगवान हृदय में सबके रहते ही है, अंतःकरण शुद्ध होता है, उसमें जो भाव होता है वो भगवान की प्रेरणा है। तो भगवान शास्त्रों के द्वारा भी उपदेश दे रहे हैं, महात्मा पुरुषों के द्वारा भी उपदेश देते हैं और हृदय के मस्तिष्क होकर के भी उपदेश देते हैं, और बहुत ज्यादा श्रद्धा प्रेम बढ़ जाता है तो भगवान प्रकट होकर के और साक्षात रूप से अपने सगुण साकार रूप के मां भी उपदेश देते हैं। हृदय का जब शुद्ध भाव हो जाता है तब उसके हृदय की जो आवाज है वो भगवान की आवाज है। भगवान का उपदेश हम लोगों को बुद्धि के द्वारा हर वक्त मिलता रहता है, किंतु हम अंतःकरण की मलिनता के कारण उसको मानते नहीं। शास्त्रों को सुनकर के और महात्माओं के वचनों को सुनकर के और पाप करने के समय के वहां जो हमारी बुद्धि में ये बात आती है कि ये बुरा काम है, ये बुरा काम है, यह भगवान की प्रेरणा है, फिर भी हम उस बात को नहीं मान करके कि हम पाप को कर ही बैठते हैं, तो हमारी निष्ठा है और वो हमारे अंतःकरण की मलिनता है। मलिनता के कारण ही संसार के विषय भोगों की आसक्ति है, और वो आसक्ति क्यों है कि विषय भोगों में सुख प्रतीत होता है, और वो सुख क्यों प्रतीत होता है कि अज्ञानता के कारण होता है। वो जो अज्ञानता है वो अनादिकाल से है, और उस अज्ञान का नाश होता है परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से, और वो यथार्थ ज्ञान होता है अंतःकरण शुद्ध होने से, और अंतःकरण की शुद्धि होती है शास्त्र महात्मा और ईश्वर की आज्ञा के पालन करने से, उनका पालन होता है श्रद्धा होने से, और वो श्रद्धा होती है ईश्वर और महात्मा उनके गुण प्रभाव तत्व रहस्य का ज्ञान होने से। गुण प्रभाव और तत्व रहस्य का जो ज्ञान है ये उनकी बातों को सुनने से, शास्त्रों के वहां उनकी बातों को पढ़ने से, उनका मनन करने से, फिर भी हम लोग उनकी बातों को भी सुनते हैं, शास्त्रों के वहां पढ़ते भी हैं, मनन भी करते हैं, फिर भी जितना विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं होती। इसमें क्या कारण है? वास्तु के बीच के मातु हम लोग उन बातों की अवहेलना करते हैं अंतःकरण की मलिनता के कारण अवहेलना करते हैं। ये एक बड़ा भारी पाप है। इस पाप के कारण से और हमको कोई दंड तो नहीं होता, यही हमारे लिए काफी दंड है कि जो विलंब होता है। हम निरपेक्ष भाव से हृदय में स्थित उस परमात्मा से हम किसी भी विषय में पूछे सलाह देवे तो भगवान हमको सलाह देते। हम नहीं माने
वो बात दूसरी। अंतःकरण शुद्ध होता है तो विशेष श्रद्धा मिलती है, और अंतःकरण मलिन होता है तो उसमें भी श्रद्धा मिलती। हम अपने बुद्धि के वहां विचार करके जिस बात को आत्मा के लिए हम हितकर समझते उसके अनुसार भी यदि हम आचरण करें तो हमारा कल्याण हो सकता है। फिर जो महापुरुष हैं उनकी आज्ञा का पालन करें और उसमें हमारा कल्याण हो जाए, उसमें तो कहना ही क्या है। शास्त्रों के विषय में भी हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए। शास्त्रों पर श्रद्धा होने से उनमें जो छिपी हुई बात है उसका भी ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है। और शास्त्रों में जो विपरीत बात दिखती है उसका भी रहस्य खुल जाता है। और जो वास्तव के वहां शास्त्रों के वहां जो क्षेपक है उनका रहस्य इस रूप में खुल जाता है कि यह बात वास्तव के बीच के वहां महापुरुषों की नहीं। ऐसा रहस्य खुलने पर भी वे उस पर दोष नहीं लगाते। महापुरुष जो शास्त्रों का प्रमाण देते हैं दो ही हेतु को लेकर के देते हैं, एक तो शास्त्रों का मान रखने के लिए और एक जिनकी सुनने वालों की श्रद्धा उस वक्ता में नहीं होती वो शास्त्रों में होती है, तो इसलिए शास्त्रों का प्रमाण देते हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्यावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री जयदेव जी गोविंद का द्वारा यह शारीरिक वाचिक और मानसिक तप तथा उत्तम भाव और श्रद्धा के विषय का व्याख्यान आज मिति को मधी भारत समर 2011 को प्रातःकाल 7 बजे श्री राम रिकदास जी प्रश्रामपुरिया की कोठी रमन रेती वृंदावन में दिया गया।